وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بإسماعيل. اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے بنیادوں کو، من البیت، اس گھر کی جو بنیادیں تھیں ان کو بلند کر دے، اس سے پتہ چلتا ہے بنیادیں پہلے تھیں وہ بلند کر رہے تھے. بنیادیں کیسے تھیں؟ آدم علیہ السلام نے اس گھر کو پہلے بنایا تھا، اس سے پہلے کہا جاتا ہے فرشتوں نے بنایا تھا، انسانوں میں آدم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد یہ گھر گر ور گیا ہوا تھا، تو اب اس کو ان بنیادوں کو وہ اٹھا رہے تھے. اور جب اٹھا رہے ہیں، جب یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے ہم خاموشی سے، جیسے ہم کھانا بنا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم سب چپ کر کے کرتے رہتے ہیں، دماغ ہمارا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، سوچیں کہیں اور پہنچی ہوتی ہیں، فکریں کچھ کسی چیز کی ہوتی. دیکھیں وہ جب بنا رہے ہیں نا، چپ کر کے نہیں بنا رہے، ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہی ہماری چھوٹی سی کوشش قبول کر لینا، بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے. انسان چاہے کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر رہا، اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹا کام تھا؟ آج تک یہ گھر عبادت کی جگہ ہے، آج تک یہ کھڑا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں اس کا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ پیچھے جا کے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہنچ رہا ہے، انہوں نے یہ تعمیر کیا تھا. لیکن کتنا ہی بڑا کام ہے، مگر پھر بھی دعائیں ہیں، اللہ قبول کر لینا. کیا ان کو دعا مانگنے کی ضرورت تھی؟ ان سے زیادہ خالص کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اللہ کی خاطر کون کام کر سکتا ہے؟ ان کے کام میں تو کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، ان کے کام میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے حکم پہ ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بناؤ. اس کے باوجود اسے پتا چلا ہم کوئی بھی عمل کریں چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، پر اس کے بعد ہم دعا کریں، رب العالمین تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، اس کا قبول ہو جانا بڑی بات ہے. ہم پھولے نہیں سماتے، ہم تو بس دو نمازیں پڑھ کے ہی ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں آج ہم نے کتنا ہی کارنامہ کر دیا. اللہ اکبر. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اپنا گھر بنوانے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا نہیں جب تک اس سے کوئی بڑا کام نہ لے لے. کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. اگر زندگی میں کوئی آزمائشیں آئیں، گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کی خاطر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کام لے گا آپ سے. کتنا بڑا کام لیا. تو اگر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام فکر کر رہے ہیں قبولیت کی، اپنے عمل کی، تو سوچیں ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لینا، ہمیں تو زیادہ قبولیت کی کس سے فکر ہوتی ہے؟ فلاں دیکھ لے وہ قبول کر لے، فلاں دیکھ لے وہ قبول کر لے، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بتاتے رہتے ہیں کسی کو، کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور وہ ذرا اکنالج کر لے، وہ ذرا تعریف کر دے. جبکہ ہمارے اسلاف جو تھے نا نیک لوگ، کیسے ہوتے تھے سبحان اللہ، وہ تو اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے. بشر بن حارث نماز پڑھنے لگے تو وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی میری نماز نہ دیکھے. تو ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آ گیا اور آ کے بیٹھ کے ان کی نماز دیکھنے لگا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں میری نماز دیکھ کے کہیں تم دھوکا نہ کھا جانا، کہ پتہ نہیں کتنی اچھی نماز ہے. ابلیس نے بھی فرشتوں کے ساتھ رہ کے ایک زمانے تک اللہ کی عبادت کی تھی. دیکھ لیں کیسے وہ لوگ تھے کہ یعنی تمہیں یہ نہ ہو کہ یہ میں نے نماز کتنی اچھی پڑھی. ابلیس دیکھو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہ کے کتنے زمانے تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. ہم تو بتانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی دیکھ بھی لیتا تھا تو آگے سے یہ کہتے تھے. جیسے اب مجھے یاد نہیں ہے ایک شخص تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام تھا، اس نے دعا مانگی ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس نے دعا مانگی تو دیکھا کہ فوراً بادل آئے ہیں اور بارش ہونے لگی. وہ اس کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھا وہ ایک جگہ گیا، اس کے مالک سے بات کی کہ مجھے ایک غلام چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی غلام کیا، آپ جو مرضی غلام لے لیں، یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، ایک کیا ایک غلام کو بلایا. کہتے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، دوسرے کو بلایا یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ فلاں غلام چاہیے. उसी को मैंने लेना है। मैंने कहा ठीक है आप ले जाएं इसको, उसको ले लिया। उसने पूछा रास्ते में कि आप नहीं मुझे ही क्यों चुना, तो उसको बताया कि तुमने इस तरह से दुआ की थी, मैंने तुम्हें देखा था, तुमने ऐसे दुआ की थी और उसके बाद फौरन बारिश हो गई। जब उसने ये सुना तो वो उसका रंग बदल गया और उस इतना घबरा गया, उसने कहा कोई ये बात किसी के सामने ना करना, और एक मस्जिद थी उसने कहा मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है, लेकर जा रहे थे अभी उसको, वो नमाज पढ़ने लगा। हम नमाज पढ़ते हुए क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मेरा और तेरा राज अब खुल गया, अब तो लोगों को पता चल गया, तू मुझे उठा ले अब। और उसके बाद देखा कि वहीं पे वफात हो गई। तो देखो लोग कैसे होते थे, किस तरह छुपाते थे अपने कामों को। हमारा दिल ये करता है कि सारों को ही पता चल जाए। मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैं तो इस दिन रोजा भी रखती हूँ, मैं तो ऐसे होती हूँ, मैं तो इतना कुरान पढ़ लेती हूँ, मैंने तो ऐसे उसकी हेल्प की, मैंने तो इस तरह उसकी मदद की, हाय किसी को पता क्यों नहीं चल रहा, काम कर लिया है, कोई अच्छा ख्वाब ही आ जाए या कोई दुआई कबूल हो जाए, पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। अब कब तक किसी को बता ना दूं, मुझे चैन ना आएगा। हाँ जुमरे पे भी जाते हैं तो वहां पे भी अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, इतनी पोस्ट करते हैं ऐसे, देखो मैं दुआ मांग रही हूं। अल्लाह हू अकबर, कोई हमारा अमल आखरत के लिए भी रहने देना चाहिए या सारे यहीं पे जाया कर देने, इसको बता उसको बता, पकड़ पकड़ के बताते हैं, कितना दिन कोई याद रख लेगा मेरा काम। तो वो कहते हैं हमारे रब हमसे कबूल कर ले, इस मेहनत को कबूल कर ले। हाँ इसलिए कि खैर की तौफीक, कोई नेकी का काम करने की तौफीक तो अल्लाह ताला ही देता है। इन्ना का अंत समीउल अलीम, है लब इसमें कोई शक नहीं कि तू ही है सुनने वाला, तू ही है जानने वाला, तेरे सिवा और कौन सुनने वाला। तू जानता है हमने ये अमल किया तो इसके पीछे हमारी नीयत क्या थी, तू जानता है ना, तू सुनता भी है और जानता भी है। अल्लाह हू अकबर, तू जानता है हमारे दिलों के हाल, किस इरादे से हमने किया, हमारे अंदर क्या है। तो कभी अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश ना करें, वो सुनता भी है और तू जानता भी है। अल्लाहु अकबर, इससे उनकी आजजी भी पता चलती है, कितनी आजजी, कितने झुके हुए थे। और जो बड़े लोग होते हैं उनका यही तरीका होता है, और जो थुड़दिले होते हैं वो फिर जैसे जो छोटी जगह होती है, देखिए समंदर में इतना पानी है ना, स्पिल ओवर नहीं होता, लेकिन जो छोटी जगह होती है ना, नहरें हैं नदियां, उनसे स्पिल ओवर हो जाता है, बाहर आ जाता है। जब दिल छोटे होते हैं तो फिर बाहर निकलता है। रब्बाना, अब देखें आगे उनकी और दुआ, रब्बाना ए हमारे रब, वजालना मुस्लिमैनि लका, हम बना दे हमको फरमा बरदार अपने लिए। अल्लाह हू अकबर, अभी कोई गुंजाइश रह गई थी क्या? उनको तो पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्योंकि जिस वक्त इस्माइल अलैह सलाम की कुर्बानी के लिए जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया फलम्मा असलमा, जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया, दोनों ने फरमा बरदारी कर ली, फिर भी यहां पे फरमा रहे हैं ए हमारे रब हमें मुस्लिमीन, हम दोनों को मुस्लिम बना दे। दुआ कर रहे हैं कौन, इब्राहिम अलैहि सलाम, अपनी दुआ में इंक्लूड कर रहे हैं इस्माइल अलैहि सलाम को, अपनी औलाद के लिए दुआएं करनी चाहिए, उनको भी साथ शामिल कर रहे हैं, हम दोनों को फरमा बरदार बना दे। इसका क्या मतलब हुआ, जबकि तो वो तो पहले ही फरमा बरदार थे, यानी सारी जिंदगी के लिए हमें फरमा बरदारी में रखना। अल्लाह हू अकबर, इंसान हमेशा फिक्र करता रहे कि या अल्लाह कभी ये ना हो कि मैं फिसल जाऊं, या अल्लाह कभी ये ना हो कि मैं इस रास्ते को छोड़ दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी ना, या मुकल्लिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीन, कि ए दिलों को उलट फेर करने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत के ऊपर जमा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। तो ये दुआ करनी चाहिए, ये नहीं कभी भी कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हम तो पहले ही इतने फरमा बरदार हैं और क्या करें। से कुछ लोग कहते हैं ना, अब कुरान इतना पढ़ लिया हमने, वो समझते हैं बेचारी, जाहिर है जब इल्म नहीं होता तो यही हाल होगा। अब हिजाब लेने को तो औरतें समझती हैं कि पता नहीं हमने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया। हिजाब ले लिया, किसी ने अबाया पहनना शुरू कर दे तो बिल्कुल ही वो तो आसमान पे है कि अब तो नेकी में तो मैं कामिल हो चुकी हूँ, मेरे सदा कौन नेक होगा, सारी दुनिया नीची नजर आ रही है, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, क्योंकि मैं एक सर कवर करने लगी। वो क्या समझने लग जाते हैं हम अपने आप को, इसी से पता चलता है हमें इल्म नहीं आया, अभी अंदर नहीं दाखिल हुआ। देखें वो काबा तामीर कर रहे हैं और इतनी आजमाइशों से गुजरे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया, वह फिर भी दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह मुस्लिम बना देना। और हम क्या कहते हैं, अब तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं और क्या करूं, नमाज पढ़ रही हूं, क्लास ले ली और हिजाब कर लिया, अब बस मुकम्मल हो गया दीन मेरे लिए, अब तो मुझे समझ ही नहीं आती। क्योंकि समझ कैसे आएगी, हमने समझा ही नहीं ना दीन को। तो वो दुआ कर रहे हैं मुस्लिम ही नहीं लगा के, दीन पे अमल करना, फरमा बरदारी, और अगर ये मुश्किल हो जाए ना, हम भी अपने लिए दुआ करें अल्लाह मुझे मुस्लिम बना। फौरन ये ना सोच ले मैं तो ऑलरेडी मुस्लिम ही हूं, क्योंकि मैं इस्लाम रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखती हूं, तो मैं तो मुस्लिम हूं ही। मुस्लिम फरमा बरदार, मुस्लिम वो होता है असल में, उस ऊंट को कहते हैं जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में होती है। सोचें हम वाकई इस डेफिनेशन के मुताबिक मुस्लिम हैं क्या, कि मेरी नुकेल मेरे मालिक के हाथ में हो। जब ऊंट की नुकेल उसके मालिक में हो, हाथ में हो, तो कैसे होता है, वो बिठाएगा तो बैठ जाएगा, वो चलाएगा तो चल पड़ेगा, वो खड़ा करेगा खड़ा हो जाएगा, वो जैसे करेगा यानी उसके पूरे टोटल कंट्रोल में, जैसे चाहेगा उसके साथ करे, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, सबमिशन, मुती हो जाना, सरेंडर कर देना, मेरी अपनी कोई विल नहीं है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है, बस मर्जी मेरे मालिक की है, मैं तो उसके हाथों में हूं, जब कहे उठ जाओ उठ जाऊंगा, जब कहे बैठो बैठूंगा, जब कहे नमाज के लिए खड़े हो नमाज के लिए खड़ा होऊंगा। कैसी फरमा बरदारी वाली जिंदगी उनकी थी, इसके बावजूद दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुस्लिम बना दे। ठीक है, कभी कोई अमल करना मुश्किल भी हो जाता है इंसान के लिए। एक सहाबी ने आके फरमाया था, या सुल्ला मेरे लिए अपने दीन पे अमल करना मुश्किल हो रहा है, फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, दीन पे अमल करना आसान हो जाएगा। अल्लाह का जिक्र किया करें, क्योंकि शैतान इंसान के लिए ये दिखाता है कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, तुम कैसे करोगे। तो वो मुस्लिम होने की दुआ कर रहे हैं, वह मिन जुर्रियतीना, और मेरी नस्लों में भी उम्मत मुस्लिमत लख, और मेरी नस्लों में भी बना देना उम्मत मुस्लिमा। उम्मत मुस्लिमा की दुआ उन्होंने उस वक्त की थी, यानी ये जो उम्मत मुस्लिमा, इसकी दुआ कर रहे हैं कि एक जमात ऐसी हो, एक उम्मत ऐसी हो अल्लाह, ऐसी बना देना हमारी जुरियत में। ये कौन दुआ कर रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ के हम दोनों की, ये उम्मत मुस्लिमा इस्माईल अलैहिस्सलाम की आगे यानी फॉलोअर्स में से है, इसहाक अलैहिस्सलाम की नहीं। इसलिए जो यहूदी कहते थे ना कि ये नबी हमारे में से क्यों नहीं आया, इसलिए कि ये दुआ मांगने वाले कौन है उम्मत मुस्लिमा की, इब्राहिम और इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगी, उनकी आगे नस्ल में से उठेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। तो अपनी जुर्रियत के लिए, अपनी नस्लों के लिए भी दुआ मांगा करें, सिर्फ औलाद के लिए नहीं, नस्लों के लिए भी। अल्लाह उनको भी फरमा बरदार बना देना, वो जैसे वो दुआ कर रहे हैं कि फरमा बरदार जमात, इनमें से एक ग्रोह हो जो जरूर हो, जो मुस्लिमों का हो, पूरी औलाद नहीं भी तो मिन जुर्रियाती ना, हमारी औलाद में से तो एक ग्रोह हो ना। सारी औलाद तो जाहिर है बता दिया गया कि सारों को तो नहीं मिलेगा कोई मनसब, जो इनमें से जालिम होंगे उनको नहीं मिलेगा, तो मिन जुरियत ना, अल्लाह इनमें से कोई तो हो ना, एक जमात तो हो ना कम अज कम। और ये वाकई जमात एक हक पे रहेगी कयामत तक, मुसलमानों में से भी, जो लोग इधर उधर हो जाएंगे लेकिन एक जमात कयामत तक हक पे रहेगी, ये उनकी दुआ है। अल्लाहु अकबर। व अरीना मनासिकना, ए अल्लाह हमें मनासिक दिखा दे, दिखा दे का मतलब क्या, यानी सिखा दे, डेमोन्स्ट्रेट कर दे हमारे लिए। कई चीजें होती हैं सिर्फ जुबानी बताने से नहीं आती, वो सिखाई जाती हैं दिखा के, क्योंकि इसके बाद ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के मनासिक सिखाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और उनको नमाज पढ़ा के दिखाई थी, पढ़ के दिखाई थी। तो इससे पता चलता है कि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ जुबानी कलामी, हम बच्चों को भी हो तो उनको ऐसे नहीं कह सकते कि आप लोग ऐसे ऐसे कर लो, उनको दिखाएं, दिखाने से ज्यादा समझ आती है फिर। तो हमें दिखा दे मनासिका ना, मनासिक मतलब हज के भी मनासिक होते लेकिन इबादत के सारे ही तरीके, कैसे इबादत करनी है तेरी, किस चीजों से तू राजी होता है, वो हमें दिखा दे, सारे इबादत के तरीके सिखा दे। अब ये कौन कह रहा है, अब हमें तो सारी जिंदगी कुछ सीखा भी नहीं होता, फिर भी कहता है सब कुछ आता है हमें, हमें कुछ ना बताओ, क्या सिखाएंगे हमें कुरान से, सारा पता है हमें, जबकि वो क्या फरमा रहे हैं, हमें सिखा दे। जिसके अंदर आजी होती है ना वही ये कहेगा, बाकी जो इनमें अकड़ है, और जितना इल्म नहीं होता उतना ही इंसान अकड़ता, मुझे सब कुछ आता है, तो वो ये भी चाहते हैं कि ऐ अल्लाह तू ही बता हमें मनासिक। कितनी उनको हिरस है सीखने की, कैसे अल्लाह ताला को राजी किया जाए। मनासिक असल में क्या है, अल्लाह ताला को राजी करने के तरीके, इबादत इसी से, इबादत के तरीके, कुर्बानी को भी, इन्ना सलाती व नुसुकी, नुसुकी नुसुक इसी से है ना, नुसुक की जमा मनासिक। व तुब अलैना, और मेहरबान हो हम पर इस्तिग़फ़ार के लिए, अल्लाह हम तुझसे तौबा करते हैं, तू हमारी इस तौबा को भी कबूल कर ले, हम पर मुतवज्जे हो जाए, हम हमारे हमारी बख्शिश करते, क्यों, इन्नका अंत तवाब रहीम, बेशक तू तू ही तो तवाब और रहीम है। तौबा किस बात पे, यहां पे तो कोई नहीं बताया गया कि उन्होंने कोई गुनाह किया था जिसके ऊपर वो ये मांग रहे हैं, तौबा मांग रहे हैं। अब तो हमारे जैसे तो लोग कोई नेकी करके फूले नहीं समाते, और उनको लगता है कि बस अब तो मैंने पता नहीं क्या कारनामा कर दिया, इवन रमजान के बाद हम सोचते हैं कि बस अब रोजे रख लिए, अब तो खुली छुट्टी हो गई, अब तो जो मर्जी करें, अगर हमने इतनी नेकियां कर ही ली हैं तो अब अगर थोड़े से गुनाह भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर हम नाफरमानी भी कर लेंगे तो अब इतना भी रिजिड होने की क्या जरूरत है, बहुत नेकी कर लिया हमने रमजान में। वो नेकी करने के बाद जिस वक्त वो काबा तामीर कर रहे हैं उस वक्त भी उनकी क्या पुकार है कि अल्लाह हम पर मेहरबान हो जा, हमारी तौबा कबूल कर ले, क्यों, इसलिए कि कोई कमी रह गई हो तो तू माफ कर देना। इंसान को वैसे भी गुनाह हो या ना हो हमेशा इस्तिग़फार करते रहना चाहिए, तौबा मांगते रहना चाहिए, क्यों, इसलिए क्योंकि तौबा सिर्फ गुनाहों को करने पे नहीं होती, तौबा तो एक लाइफ स्टाइल है, तौबा ये है कि इंसान का दिल दुनिया में जब इंसान होता है कई चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कई तरफ उसका दिल जाता है, कहीं दुनिया के काम धंधे हैं, कहीं और कोई दुनिया की ऐसी अट्रैक्शंस हैं उनकी तरफ इंसान का जहन, इंसान का दिल उस तरफ होता है, उससे अपने आप को वापस लेकर आना, ताबा या तुबू कहते हैं लौटने को, उससे लौट आना, ये है तौबा। कि मेरा दिल अगर कहीं पे भी इधर उधर हुआ, वापस मैं अल्लाह ताला की तरफ करूं, ये ही तौबा करना है। तो ये तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा इंसान का दिल कहीं ना कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कहीं कोई गफलत आ जाएगी। तो उस सारे से मुंह मोड़ के अल्लाह ताला की तरफ वापस पलटना, इस ये मुसलसल करना पड़ेगा, और इसी को तौबा कहते हैं। ठीक है, कहीं आंखें कहीं इंगेज होंगी, कहीं दिल कहीं और डिस्ट्रैक्ट होगा, कहीं दिमाग के अंदर कोई और बात आएगी, तो तौबा पलटने का अमल है, और ये हमेशा करना है, चाहे किसी के कोई भी गुनाह ना हो। और ये सोच लें कि अगर इब्राहिम और इस्माइल जैसी हस्तियों को भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिखाया कि वो भी तौबा कर रहे हैं, तो हमें फिर कितनी तौबा करनी चाहिए। और फिर मुस्लिम बनने के अमल में, फरमाबरदारी के अमल में कोई कमी रह गई है, तो ऐ अल्लाह तू मेहरबान हो जा, तू माफ कर दे, तू तवाब है, तवाब में एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज्यादा, यानी अल्लाह ताला वो है कि जो अपने बंदे की तौबा का मुंतजर रहता है कि कब मेरा बंदा भीगी हुई आंखें लेकर अपनी पेशानी झुका के शर्मिंदा होके मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह ताला इंतजार करता है। और फिर जब बंदा तौबा कर लेता है तो वो रहीम भी है, ये है उसकी मोहब्बत, के तवाब के बाद रहीम भी है। आप सोचे ना, किसी ने हमारे साथ कोई ज्यादती की हो, किसी के साथ किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, फिर वो जब माफी मांगने के लिए आता है तो भी हमारा गुस्सा खत्म नहीं होता। अगर हम माफ कर भी देते हैं ना, तो उसके बाद कहते हैं इसके बाद शक्ल ना दिखाना, इसके बाद मेरे सामने ना आना, बस ठीक है मैंने माफ कर दिया अब जाओ, वरना गुस्सा नहीं खत्म होता। और अल्लाह ताला को देखें, सारी जिंदगी का नाफरमान गुनाहगार जब उसकी बारगाह में आके आंसू गिराता है, तौबा करता है, तो वो कहता है मैं माफ तो करता ही हूं, इसके बाद मैं बेइंतहा मोहब्बत भी करता हूं तुमसे, इसके बाद ये नहीं कहता आप दफा हो जाओ यहां से, ठीक है तुम्हें माफ कर दिया जाओ, नहीं, मुसलसल उसके बाद रहम भी करता है। और रहीम में क्या, बार बार रहम करने वाला, बार बार मेहरबानी करने वाला, वो भूल जाता है कि इस बंदे ने पहले क्या गुनाह किए थे, कभी उनको वापस नहीं लेकर आता, कभी उसका ताना नहीं देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच्ची तौबा करने वाला है ना, वो ऐसे है जैसे कभी उसने गुनाह किया ही नहीं, अल्लाह ताला ऐसे मिटा देता है उसके गुनाह को जैसे उसने कभी भी नहीं किया, ये है वो अत्तवाब और रहीम। देखिए जो नाम आते हैं ना, ऐसे ही नहीं है रैंडमली कोई भी नाम आ जाए, उसका भी उसके साथ कुछ रब्त होता है, समी भी है, अलीम भी है, सुनता भी है और जानता भी है जो दिल के अंदर की बातें, तवाब भी है, तौबा वो कबूल कर रहा है, लेकिन उसके बाद रहम भी कर रहा है, उसके बाद धुतकारता नहीं है, फिर दोबारा अपना बना लेता है। तो बंदे को तो हमेशा अल्लाह ताला की तरफ तौबा के साथ बढ़ते रहना चाहिए, कभी ये ना कहें मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि मैं तौबा करूं, मैंने क्या ऐसा कर दिया, सारी दुनिया ही करती है, नहीं, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो पाक थे गुनाहों से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, वो खुद दिन में 100 दफा तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, और फिर उनकी अगली दुआ सुने, ربنا وبعث فيهم رسولا منهم, ए हमारे रब इनमें से ही भेज एक रसूल, मबूस कर भेज उठा एक रसूल जो इन्हीं में से हो, किन में से, जो मक्का के रहने वाले हैं, क्योंकि यहां पे है ना वो, इस बलद में बैठे हुए हैं इस वक्त, यहां पे तामीर कर रहे हैं। तो अब देखें उनको कितनी फिक्र है आगे की भी, अपनी नस्लों की भी, कि आगे भी इनमें कोई होना चाहिए जो इनको भलाई की बात बताता रहे, जो ये काम करता रहे जो आगे आ रहे हैं। ये भी बयान किए कि ये काम करने वाला ऐसा रसूल जो ये काम करे, चार काम आगे बताए गए हैं, और ये दुआ उन्होंने की थी, अल्लाह ताला ने उनकी इसी दुआ को कबूल फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, ये वो दुआ है जो उन्होंने मांगी थी कि अल्लाह इनके अंदर एक रसूल उठा। जब इनके अंदर उठा, अपने रब्बा ना है, हमारे रब इस्माईल अलैहि सलाम साथ हैं, तो जाहिर है उनकी औलाद में से आएगा ना, इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ साथ इस्माईल अलैहि सलाम भी दुआ कर रहे हैं, तो इस्माईल अलैहि सलाम की आगे लड़ी में से होंगे, इसहाक अलैहि सलाम में से तो नहीं होंगे। फिर एक ऐसा रसूल उठा, और इसी का जिक्र फिर आगे सूरह बकरा में भी और आले इमरान में भी और आगे सूरह जुमा में भी आता है कि अल्लाह ताला ने फिर एक रसूल भेजा जो ये काम करता है चार, और ये बहुत अहम काम है, ये एक जो फरीजा है एक रसूल का, या उनका मकसद रिसालत का, उनको रसूल बना के भेजने के मकासिद, उनकी जो जॉब है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो बताई गई है कि वो क्या करे। यहाँ पे ये मांगा गया और आगे कहा गया है कि हमने ऐसे रसूल भेजे जो ये काम करते थे, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा, कि ऐसा रसूल भेज जो इनमें से हो। एक तो सबसे पहली बात ये कि इनमें से को आउटसाइडर आ गया तो फिर तो लोग उसके साथ बिल्कुल वो कनेक्शन ही फील नहीं करते ना, और फिर उसको पता भी नहीं होता इनके क्या मसाइल हैं, इनके क्या, देखे ना भाई, आपको कोई फ्रेंच में आके पढ़ाना शुरू कर दे, आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको जो आपकी जुबान में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता हो, आपके मसाइल को जानता हो, आपके कल्चर को समझता हो, वो बात बताएगा तो आपको ज्यादा उससे कनेक्शन फील होगा। तो इन्हीं में से भेज, अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर उनमें से ही रसूल भेजे थे, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम बाहर से आए थे और उन्होंने फिर दुआ की थी, तो उसके बाद किसी कौम के अंदर नहीं बाहर से कभी रसूल आए, उन्हीं के अंदर से होते थे। यतलु अलैहिम आयाती का, ए अल्लाह ऐसा रसूल भेजना जो तिलावत करे तेरी किताब की, तिलावत करे तेरी किताब की, यानी उनके पास फिर किताब भी हो, उसकी तिलावत करने वाले हों वो, और फिर तिलावत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तिलावत तला यतलु तिलवन का मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो करना यानी समझ समझ के पढ़ना, और इसके अंदर तिलावत में सही मखारिज भी हैं, तजवीद के साथ पढ़ना भी है। कुरान करीम वो अजीम कलाम है अल्लाह ताला का, जिसके सिर्फ अल्फाज की भी तिलावत की जाए, माना नहीं भी आपको समझ आता, सिर्फ इसको पढ़ा भी जाए ना, तो भी ये इबादत है। तौरात और इंजील पे तो तिलावत करने का सवाब नहीं, बल्कि उनको मफहूम को समझना और अमल करना, वो इबादत थी, मगर कुरान पाक की वाहिद किताब है जिसकी तिलावत भी इबादत है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हर हर्फ पे 10 नेकियां, और मैं ये नहीं कहते अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ पे 10, लाम पे 10, मीम पे 10, और अलिफ लाम मीम का तर्जुमा किसी को आता है, इसका माना किसी ने समझा है, किसी ने नहीं समझा। इसी से पता चला कि अगर बगैर समझे भी पढ़ रहे हैं ना, तब भी सवाब मिलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अपनी आवाज़ों से मुजय्यन करो, यानी इतनी खूबसूरत आवाज़ से पढ़ो, तरन्नुम से पढ़ो, कुरान को पढ़ने में भी खूबसूरती लाओ। बल्कि बुखारी की हदीस में है कि जो कुरान को खूबसूरत तरीके से नहीं पढ़ता, वो हम में से नहीं। अब हम गाने गा लेते हैं और कर लेते हैं, लेकिन कुरान को सही खूबसूरत पढ़ने के ऊपर मेहनत नहीं करते, तो इसको तो अपनी आवाजों से खूबसूरत बनाना है, मुजय्यन करना है। तो वो तिलावत करके लोगों को दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कैसे करनी थी आप पर, यानी कुरान उतरा तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आपकी जुबान मुबारक से लोगों तक पहुंचेगा, तो आप तिलावत करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा ना, ये किताब वो नहीं है कि जो तख्तियां थी कि मूसा अलैहि सलाम उठा के ले आए वहां से तूर से, ये तो वैसे नहीं था, ये तो जो आप तिलावत करेंगे वही कुरान है, ठीक है। और आयत किस चीज को कहते हैं? निशानी, ये भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं। दूसरा मकसद वा युअल्लिमुहुमुल किताब, दूसरा मकसद इनको तालीम दे किताब की, यानी सिखाए इनको किताब, समझाए इनको किताब, इसको खोल खोल के बयान करे। वो अरब लोग ही थे, अरबी समझते थे, और बल्कि उनकी तो अरबी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो अपने आप को अहले जुबान कहते थे, सारों को आजमी कहते थे, कि ये इनको क्या पता, हम ही हैं असल जुबान दान, तो हम हैं, सारा अरब तो ऐसे ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया इसलिए भी कि कुरान के फहम को लोगों तक पहुंचाना, यानी उनको समझाना और खोल के बताना, सिर्फ इसका मतलब लुगत जान लेने से, अरबी जुबान जान लेना काफी नहीं है कुरान को समझने के लिए, बल्कि समझना कैसे है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। इसके लिए ही तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा कि आपने समझाना है उनको, आपने बताना है, वरना अरबी जुबान तो सारे जानते थे, उनको भी बस ला के दे देते, पढ़ पढ़ के बता देते, अब आगे करने की क्या जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका ये फर्ज भी रखा, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही समझाया ना, जब वो आयात उतरी के सफेद धागा और स्याह धागे की, के सहरी का वक्त कब खत्म होता है, जब ये अलग अलग मुमताज हो जाए तो खाना पीना बंद कर दो, तो वो सहाबी स्याह और सफेद धागा रख के लेट गए कि जब ये अलग अलग होंगे तो फिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं है मतलब, ये मतलब है इसका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को सिखाने वाले भी हैं, इससे पता चलता है पढ़ना अलग बात है और सीखना अलग बात है, ठीक है। तो सीखने का भी एहतमाम करना है, सिर्फ पढ़ना आना काफी नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, उसके बाद समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझना भी जरूरी है, क्योंकि आगे अमल का मरहला तो तभी आएगा ना। जो हम ये कर रहे हैं ये तालीम है किताब की, और वल हिक्मा, और हिकमत भी हो, अल्लाह उसको उन ऐसे नबी इनमें भेजना जिस वो जो हिकमत दानाई, हिकमत दानाई को कहते हैं ना, लेकिन हिकमत यहाँ पे मतलब क्या है? एक तो हिकमत का माना होता है सही वक्त में सही फैसला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने जो फरमा दिया वो हिकमत है, यानी प्रैक्टिकल विजडम मुराद है यहाँ पे, कि क्या इसको कैसे अप्लाई करना है, वो करके दिखाया। जैसे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का अखलाक क्या है, तो फरमाया आपका अखलाक कुरान है, नहीं आप चलता फिरता कुरान थे। अब लोगों को कैसे पता चले अप्लाई कैसे करना है इसको? अब देखिए ना, अब नमाज है, नमाज, नमाज का हुक्म कुरान में आ गया, इसका बता भी दिया सिखा भी दिया, लेकिन अब उसको पढ़ना कैसे है, कयाम कैसे करना है, फातिहा कहाँ पढ़नी है, रुकू में कैसे झुकना है, रुकू में क्या क्या पढ़ना है, सजदे कितने करने हैं, कौन कौन से आज़ा ज़मीन पे रखने हैं, ज़कात सोने में कितनी है, चांदी में कितनी है, खेती में कितनी है, रोज़ा कब रखना है और कब खोलना है, और ईद कब होनी है, और ये सारी चीज़ें कौन बताता? ये है हिकमत। और हिकमत वो विजडम नहीं है कि हम कहें मैं बड़ा ज़हीन हूँ तो लिहाजा मैं तो जो खुद ही माने बना लूँगा कुरान के, नहीं, कुरान के साथ हिकमत क्या है? हदीस, आज हमारे पास तो हदीस पहुंची है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा भी दिया और करके दिखा भी दिया, और वो सब हमारे पास पहुंचा हुआ है। इससे पता चलता है कुरान हदीस के बगैर नहीं है मुकम्मल, और कुरान हदीस के बगैर नहीं समझ में आ सकता। जब आपने अप्लाई करना है तो हदीस भी क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से ही है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे बता दिया उन्होंने वैसा ही किया, और हदीस भी वही है, गैर मतलू है। एक वरी वही है जिसकी तिलावत की जाती है वो कुरान है, और एक है जो तिलावत नहीं किया जाता लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, वो है हदीस। तो ये सुन्नत कह सकते हैं, हिकमत सुन्नत कह सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे उसको करना है वो हिकमत है। और ये भी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना हज्जतुल विदा के मौके पर कि मेरे से मनासिक सीख लो हज के, हो सकता है अगले साल में मेरी तुमसे मुलाकात ना हो, तो सीख लो मेरे से, जैसे जैसे करके दिखाया वैसे करते रहे। तो ये भी हमने उनसे सीखना है, उनसे समझना है, खुद नहीं कोई बैठ के डिक्शनरियां लेके हम ये देखेंगे इसका मतलब क्या और हम वैसे करना शुरू कर दें। वह युज़क्की हिम, और इनका तज़किया करो, करने वाला वो जो ऐसा रसूल भेजे, ऐ अल्लाह ताला ऐसा रसूल भेज जो इनको हिकमत की बातें बताए, इनका तज़किया करे। तज़किया क्या है? अमल करना। अल्लाह ताला की मर्जी किस चीज़ में है किस में नहीं है, वो है तज़किया। तज़किया के असल में दो माने होते, एक है पाक करना, दूसरा है बढ़ाना, नशो नुमा करना। तो पहले पाक करना होगा अपने जाहिर और बातिन को ना, पाक करना, गंदगियां निकालना इसमें से, और फिर उसके बाद इसमें जैसे बिल्कुल आप एक बागबान को देख लें जो अपने बाग में पहले क्या करता है, जो जड़ी बूटियां हैं वीड्स हैं वो सारे निकालता है, जमीन को साफ करता है, फिर बीज डालता है, उन पौधों को उगाता है जो फूल देने वाले हैं, फल देने वाले हैं। इसी तरह अंदर की सफाई होती है, अंदर की सफाई तज़किया है, कि इंसान अपने अंदर से गुनाहों को, दुनिया की मोहब्बत को, लालच को, कीनों को, बोझ को, इन सब चीजों को निकाले और इसकी जगह पर अच्छे पौधे लगाए, नेकी, खैर, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, इन चीजों को डालना। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद में से था कि आप सहाबा की ऐसी तरबियत करें, ये ट्रेनिंग का नाम है, अमली तौर पे ये उनसे कराना। और आप देखते हैं सारा बात, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक तज़किया की एक मिसाल देखें, आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत सफ़िया के बारे में फरमा दिया कि वो तो छोटे कद की हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन क्या फरमाया, आयशा तुमने ऐसी बात की है कि अगर समंदर में डाल दो सारा समंदर कड़वा हो जाए। ये क्या है कि ये बुरी बातें निकाल दो, जिहालत की चीज़ें सहाबा में से निकाल दी, वो ही जो पिछले रस्मों रिवाज, वो ही जो अपने हसब नसब पे फख्र और इस पे फख्र और बढ़ाइयाँ अपनी, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये बता दिया कि तुम्हारे अंदर वो है अल्लाह ताला के नज़दीक इज्जत वाला, वो नहीं जिसके पास माल बहुत है, जिसके पास हसब नसब बहुत है, बल्कि वो जो तकवे वाला है। तकवा वाला कौन होता है? जो हर दम इस सोच के साथ जिंदगी गुजारे, कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, और कहीं मुझसे कोई ऐसा काम रह ना जाए जो मेरे रब की रजा वाला काम हो, जो उसकी खुशनूदी का बायस बने। ये है तकवा। तो वो तो किसी और तरह की जिंदगी गुजारते थे, उनमें क्या क्या बुराइयां थी, वो सारी बुराइयां उनमें से निकाल के उनको एक ऐसे ऐसी एक जमात बना दिया, ऐसी उनकी तरबियत फरमाई कि 23 साल के थोड़े से अरसे में वो सहाबा वो बन गए कि पूरी दुनिया के लिए, रहती दुनिया के लिए बल्कि नमूना, के अल्लाह ताला ने कुरान में उनके ईमान को क्राइटेरिया बना दिया कि फइन आमनू, अगर तुम ईमान लाते हो इनके ईमान की तरह तो तब तुम्हारा ईमान मोतबेर है, तब है तुम्हारा असल ईमान, उनको मयार बना दिया उनके ईमान को। ये वो लोग थे ना जो शराब पीते थे, बुत परस्ती करते थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, सूद खाते थे, और कितनी तरह की बुराइयां थी, सबसे पाक साफ करके उनको इतने खूबसूरत एक जमात बना दिया कि आज उनकी मिसालें दी जाती हैं, उनको कॉपी करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। रदी अल्लाहु अनहुम व रदू अन बन गए, जो अल्लाह से राजी और अल्लाह उनसे राजी हो गया। ये था तज़किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और ये किताबें पढ़ने से नहीं होता, ये ट्रेनिंग है जो उस्ताद देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाया था, और मुअल्लिम का यही तरीका नहीं था सिर्फ कि पढ़ा के चले जाएं, एक पढ़ाना भी होता है और एक तालीम होता है। एक बस पढ़ा दिया बस ठीक, एक सिखा दिया उनको। ये जो हम पढ़ते हैं इतनी डेप्थ में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं इतना लंबा, इतनी लंबी तफसीर की क्या जरूरत है। देखिए 2 मिनट में भी मैं करके जा सकती हूँ, इतनी लंबी की वाकई कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन क्या तज़किया का अमल नहीं होगा फिर? ये गंदगियां नहीं निकलेंगी अंदर से, नेकी के जो बीज हैं वो नहीं पड़ेंगे। आमने सामने हो तो वो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आमने सामने नहीं तो इसके लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा। और ये बड़ा ही तकलीफदेह अमल होता है जब इंसान को छोड़नी पड़ती हैं वो चीजें जो जो हमेशा से, हमारे तो घर वाले ऐसे ही करते थे, हमारा तो रिवाज यही है, हमारे तो हमारे खानदानों में ऐसे है, वो निकाल के और अपने आप को दीन इस्लाम के मुताबिक, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसके मुताबिक ढालना ये आसान नहीं होता। इसीलिए कद अफलाह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया किया, वमन ख़ाबा वकद ख़ाबा मन दस्साहा, और जिसने अपने आप को वैसे ही छोड़ दिया, अपना तज़किया नहीं किया, वो नाकाम है। कामयाब वही है जो अपने आप को पाक कर ले, अपनी निगाह को पाक कर ले, अपनी सोच को पाक कर ले, अपनी जुबान को पाक कर ले, अपनी जिंदगी को पाक कर ले, अल्लाह ताला की इतात में ले आए, इन गंदगियों को निकाल दे अपनी जिंदगी से, चाहे वो माशरे से हमने ली हुई है, चाहे वो अपने खानदानों से ली हुई है, चाहे वो हमारे अपने नफ्स की कमजोरियां हैं। तो पैगंबरे आखिर जमाने लोगों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से निकाल के अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का रास्ता दिखाया, उनकी ट्रेनिंग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाहुम्माती नफ्सी तकवाहा, ए अल्लाह मुझे तकवा इख्तियार, तो तकवा अता फरमा मेरे नफ्स को, वह जक्की हा इसको पाक कर दे मेरे नफ्स को, अंत खैरु मन जक्का, तू ही पाक कर सकता है अल्लाह। तो तज़किया की ये उनका एक, उनकी जिम्मेदारी थी, एक अल्लाह ताला ने उनको ये भी जॉब दी थी कि आपने ये भी करना है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हर वो चीज जो जन्नत की तरफ जाने वाली है और जो जहन्नुम से दूर करने वाली है वो सब तुम्हें बता दिया, सब बता दिया। तो अब आपको समझ आया कि यतलू अलैहिम आयाती का क्या है, युअल्लिमुहुम अल-किताबा क्या है, वल हिकमता क्या है, और युज़क्कीहिम क्या है। और इसी के ऊपर हम अपने कोर्स का पैटर्न भी रखते हैं कि उसके अंदर तिलावत कुरान भी हो, तजवीद भी आप सीखें, ये तालीम भी दी जा रही है, इनको खोल खोल के बयान किया जा रहा है, हिकमत भी हो कि हदीस के थ्रू कुरान को सिखाया जाए, इससे बाहर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसके ऊपर अमल किया, कैसे करके दिखाया, कैसे समझाया इन आयात को, वो हिकमत है। और फिर तज़किया ट्रेनिंग इसके जरिए से हो, इस कोर्स के, चाहे आप कितने ही दूर बैठे हो, जितनी भी हमारी जाहिर है लिमिटेशंस हैं, मगर इन लिमिटेशंस के साथ ही जो बेस्ट हम कर सकते हैं। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू अजीज है, तू अजीज है, यानी तू जबरदस्त। अजीज वो होता है जो गालिब हो, जिस पे कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई उसको शिकस्त नहीं दे सकता, और इज्जत वाले को भी कहते हैं जबरदस्त। इसीलिए तो इस जबरदस्त आइन जा से कि या अल्लाह तेरे से ये दुआ कर रहे हैं, तेरे लिए कबूल करना कौन सा मुश्किल है, तू तो गालिब है अल्लाह, तू तो अल अजीज है और अल हकीम है, हिकमत वाला है। ए अल्लाह जो भी तूने हमें अहकामात दिए उनमें हिकमत है, तो तू हमें ये यानी ऐसा रसूल भेज दे अल्लाह, जब भी दुआ करें ना तो उसमें इंसान को यकीन के साथ मांगना चाहिए। ये नहीं है कि पता नहीं ऐसा होता भी है या नहीं, ये तो बड़ा ही मुश्किल है, कहाँ इन लोगों के अंदर कोई आ सकेगा, नहीं, कन्विक्शन होनी चाहिए। दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, जिसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। और कब अल्लाह ताला ने भेजना है ये रसूल, ये उसका फैसला है, उसकी हिकमत है। आपको पता है कब ये दुआ कबूल हुई? 2500 साल बाद। अगर हमारी दुआ थोड़े दिन कबूल ना हो तो हम थोड़े दिले हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं, कहने लगते हैं हाय मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती। वो पैगंबर हैं अल्लाह के, लेकिन अल्लाह ताला को बेहतर पता है कब ये रसूल भेजना। तो 2500 साल का अरसा कोई कम है? यानी वो फौत हो गए हैं उसके बाद ये दुआ कबूल हुई है। तो दुआएं मांगने से कभी भी मायूस ना हो, सकता है हमारी जिंदगी में कबूल हो जाए। मसलन अपने बच्चों के लिए हम मांगते हैं, हो सकता है हमारे सामने वो उस तरह से ना हो लेकिन हमारे जाने के बाद हो। ये रायगा नहीं जाती, कभी जाया नहीं होती दुआएं, मांगते रहे फिर भी। अगर हम हमारी जिंदगी में हम उसके समरात देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारे मरने के बाद हो जाए पूरी। हम अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए मांगते हैं, हमारे जाने के बाद भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं। तो इसलिए कभी भी ये कह के और दुआ मांगना ना छोड़े कि मैंने अपने सामने नहीं देखा और बस थोड़े दिन गुजर गए और अभी तक नहीं कबूल हुई। नहीं, फिर भी मांगते जाएं और ये जहन में रखें कि वो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर, उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, जो 5 टॉप के पैगंबर हैं उनमें से हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और फिर भी वो दुआ करें और 2500 साल में पूरी हुई है। तो इस आयत को देखें और फिर सोचें कि मेरी क्या प्लानिंग है। कभी भी ये ना सोचें आए ये भी अब करना पड़ेगा, ये भी अब पढ़ना पड़ेगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही इसलिए थे कि हमें कुरान पाक की तिलावत सिखा दें, और वैसे ही आज तक हम तक पहुंची है, तो हम उसको सीखें। फिर इस बात हम इसकी तफसीर भी सीखें इस कुरान की, फिर हम हदीस को भी पढ़ें, और फिर हम इसके ऊपर अमल करने के लिए भी कोशिश करें। हमारी ट्रेनिंग क्या है कि अमल करना ना, उसके ऊपर सहाबा से अमल कराया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी जो बुराइयां थी वो उनके अंदर से निकाल निकाल के और फिर उनके अंदर नेकियों के बीज डाले। और इसके अंदर एक चीज बहुत फायदा देगी आपको तज़किया के अमल में, अच्छी सोहबत। अच्छी सोहबत बहुत हेल्प करती है, सालेहीन का साथ, नेकों का साथ। इमाम शाफी शायरी भी करते थे ना, तो उनका दीवान भी है, तो वो अपनी शायरी में कहते हैं कि मैं सालेहीन से मोहब्बत करता हूं, हालांकि मैं खुद तो नेक तो नहीं हूं, लेकिन इसलिए मोहब्बत करता हूं शायद अल्लाह उनकी मोहब्बत की वजह से मुझे भी सालेह बना दे। आप देख लें इमाम शाफी ये फरमा रहे हैं। और ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। इवन सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठ के जाते थे तो कहते थे ईमान की वो कैफियत नहीं रही जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थी। हजरत हंजला नहीं फरमाते हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, कि भाई मैं अब यहां पे होता हूं तो मेरे कुछ होती है दिल की हालत, घर जाता हूं तो बीवी बच्चे घर और काम में पड़ गया, तो वो ईमान की हालत नहीं है, जबकि वो इतने सहाबी हैं। तो आपसे सर हमने फरमाया था अगर तुम्हारी वही हालत रहे तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने लगे। तो ईमान की फिर वो हालत नहीं रहती, इसलिए अपने आप को अच्छी सोहबतों में रखें, कॉन्स्टेंटली अहले इल्म के साथ बैठें, ताकि ईमान को गजा मिलती रहे। जैसे हमारे जिस्म को गजा चाहिए होती है ना, अच्छा माहौल भी चाहिए और हमारी रूह की जरूरत है ये, तो रूह की ये जरूरत, जैसे जिस्म की जरूरत है इस तरह ये रूह की जरूरत है। तो अगर दीन को जिंदा रखना चाहते हैं, अमल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सालेहीन के साथ बैठें। ये नहीं कि अपने से भी ज्यादा जो दीन में कम है उनके साथ बैठ बैठ के, और आप शेखियां मारते रहे, मैं तो ये भी करती हूँ और ये तो ये भी नहीं करती, और अपने आप को भी बस बहुत ऊंचा समझते रहे। दीन के मामले में हमेशा ऊपर को देखें, फलां इतना कुछ करता है और देखो मुझे भी ऐसा करना है। वमन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा, और कौन है जो मुंह मोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से, सिवाय इसके कि जो बेवकूफ़ी होगा। यानी वो कहते हैं हम, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसे, वो यहूदी कहते हैं, नसरानी कहते हैं हाँ मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे। तो कहा गया हाँ भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जैसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो बड़ा ही बेवकूफ़ है जो इस तरीके पे ना हो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे ही थे, उनके तरीके पे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब अल्लाह ताला के हाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं है, क्योंकि हमारे पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका वैसे तो आया नहीं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो है हमारे सामने, उनकी सुन्नतें हमारे सामने हैं, जो उनके तरीके को फॉलो नहीं करता वो अल्लाह ताला के नजदीक बेवकूफ है। उसने खुद ही अपने आप को हमाकत में डाला। वलकदस्तफीनाहु फिद्दुनिया, हमने उसको चुन लिया दुनिया में भी। वह इन्नहु फिल आखिरत लमिन सालेहीन, और आखिरत में भी वो सालेहीन में से होगा, साले लोगों में से होगा, उन लोगों में से जो जिनके लिए, देखे यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे तवफ्फनी मुस्लिमम व अलहिकनी बिस्सालेहीन, नेकों के साथ मिला देना, उन लोगों के साथ जो अल्लाह ताला के प्यारे, जो अल्लाह ताला के नेक लोग हैं उनके साथ मिलाना। तो यहाँ पे भी आप देखें, अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफिकेट दुनिया में ही दे दिया था कि ये सालेहीन में से होंगे, अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया। तो जो चुने हुए अल्लाह ताला के लोग हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें भी चुन लेना अपने दीन के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में चुना, कोई ऐसे ही तो नहीं, अल्लाह ताला की सिलेक्शन होती ना, उसके पीछे कोई बात है जो आगे आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही नहीं चुन लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भी चुना और आखिरत में भी सालेहीन में से कर दिया उनको। ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है उनके लिए। और फरमाया इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, ये है वजह, जब उसके रब ने उससे फरमाया मुती और फरमा बरदार हो जा, असलिम अब बार बार आ रहा है ना, उन्होंने खुद भी दुआ की थी और फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया मुती और फरमा बरदार, फरमा बरदारी इख्तियार कर ले, तो उन्होंने आगे से क्या फरमाया, काला बगैर किसी चूं चरां के। अब हमें कहा जाए ना कि आप ये हुक्म माने, आप मुकम्मल अपने आप को सबमिट कर दें अल्लाह ताला के आगे, मुकम्मल सबमिशन हो आपकी तरफ से, तो आगे से क्या कहते हैं, हाँ सोचेंगे अभी, जैसे देखेंगे ना, मजबूरियां भी तो होती हैं ना, तो जरा घर में मशवरा कर लूँ मैं, और इस तरह की बातें हम करते हैं, और अभी तो नहीं, हाँ मैंने सोचा तो हुआ है फरमा बरदारी करूं, लेकिन देखें अभी ऐसे हालात नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे, आप भी दुआ करें हमारे लिए, हम ये आगे से कह देते हैं। जबकि उन्होंने क्या फरमाया, कुछ नहीं है बीच में, वाह भी नहीं है, काला असलम तू ली रब्बिल आलमीन, मैं तो पहले से ही फरमा बरदार हूं रब्बिल आलमीन के लिए, पहले से ही तैयार है, हाँ पहले से ही फरमाबरदारी के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। सुम्मा भी नहीं आया, वाह भी नहीं आया, फा भी नहीं आया, सुम्मा भी तराखी के लिए होता है, यानी थोड़ा सा डिले के बाद, सुम्मा अज़तर्रुहू पीछे है ना, फिर हम यानी जिंदगी तो गुजार ले, ये आयत नंबर 126 में आपने सुम्मा देखा है ना, सुम्मा होता है कि मतलब फिर ऐसा हुआ उसके बाद, जिसको हम कहेंगे कि दुनिया में ये फायदा उठा लें, इसके बाद फिर हम उनको, उसमें थोड़ा सा टाइम होता है, टाइम नहीं है यहाँ पे कि कुछ सोचने का उन्होंने वक्त मांगा हो, कुछ मशवरा करने का मांगा हो, कुछ चीजें हालात देखने का वक्त मांगा हो, कि हालात को भी तो देखना पड़ता है ना भाई, नहीं, जूं ही कहा असलिम फरमा बरदार हो जा, झुक जा, अल्लाह अकबर, उन्होंने फौरन कहा मैं झुक गया रब्बुल आलमीन के लिए। और आप सारी उनकी जिंदगी के वाकयात देख लें, ये सिर्फ उनकी जुबान की बात नहीं थी, दावे तो हमसे भी कितने ही करा लो, हम भी झुके ही पड़े हैं, ये हमसे ज्यादा मुस्लिम कौन होगा, लेकिन फिर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि जैसे ही ख्वाब देखा, फिर बेटे से फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, जो जो चीज जैसे हुक्म दिया गया वैसे ही करते ही चले गए, विदाउट अ सेकेंड थॉट, पूरा का पूरा अपने आप को सबमिट कर दिया, थोड़ा नहीं किया, हम क्या करते हैं, थोड़ा किया थोड़ा छोड़ा, जिसमें मर्जी है वो तो कर लिया, जिसमें मर्जी नहीं वो छोड़ दिया, वो नहीं, वो टोटल सबमिशन, अल्लाह ताला हमसे ना टोटल सबमिशन रिक्वायर करता है, उसका तकाजा है, उसकी डिमांड है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मी, सिर्फ उदख़ुलू फ़िस्सिल्मी नहीं है, काफ़ा दाखिल हो जाओ इस्लाम में, पूरे के पूरे दाखिल हो, ये नहीं आधा पैर बाहर और आधा अंदर, आधे तीतर आधा आधे बटेर, ये भी कर लिया तो वो भी कर लिया, टोटल सबमिशन चाहिए। ये चीजें ये नहीं मुझे पसंद, अब वो नहीं मुझे पसंद, और वो मेरी अम्मी को नहीं पसंद, वो मेरे बच्चों को नहीं पसंद, उसमें हस्बैंड नहीं मानते, ये नहीं, फिर सबमिशन तो टोटल सबमिशन हो और कंप्लीट सबमिशन हो। फातम्मा हुन्ना से नहीं पता चला आपको कि जब अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, फातम्मा हुन्ना, मैंने आपको क्या बताया, पूरा का पूरा किया, 100% परफॉर्मेंस। ऐ अल्लाह हमें भी इनके नक्शे कदम पे चला दे, ऐ अल्लाह हमें भी इस तरह का बना दे कि हम पूरे के पूरे अपने आप को तेरे आगे झुका दे, ऐ अल्लाह ताला तू हमसे भी ऐसे काम ले ले जैसे इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से तूने लिए, ऐ अल्लाह हमारी भी जुर्रियत में उम्मत मुस्लिमा उठाना, ऐ अल्लाह हमारी जुर्रियत से भी दीन की बेहतरीन खिदमतें ले लेना, ऐ अल्लाह जो नबी अलैहिस्सलाम का मिशन था कि तिलावत करना और तालीम देना और हिकमत और तस्किया करना, ऐ अल्लाह हमें इस पे पूरे उतार दे। ये अमल की बातें जितनी मैं बताती जाती हूँ, आप लोग उनको सेपरेटली प्लीज़ ज़रूर लिख लिया करें। और देखें यहाँ पे एक और मुझे बात ये देख के मुझे याद आया कि देखिए बच्चों को साथ काम में शामिल करना कितनी ज़रूरी है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ शामिल रखा घर की तामीर करते हुए, और दूसरा यहाँ पे मनासिक उन्होंने कहा ना हमें अल्लाह ताला मनासिक दिखा दे, तो इससे पता चलता है कि हज उम्रे पे जाने वाले लोगों को पहले चाहिए कि वो मनासिक को सीखें, ठीक है, वरना वहाँ जाते हैं और फिर इतनी सारी गलतियाँ करते हैं और वहाँ से पूछते हैं कि अब क्या करें हम, तो ये सीख के जाने चाहिए, और ये सीखने की चीज़ है वाकई, ऐसे ही नहीं उठ के चले जाना चाहिए कि बस ज़्यादा राह है तो बस चले गए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनी।
إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين